मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 14 जुलाई 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही स्वागत करता हूं अपने एक विशेष नौजवान साथी का जिनका नाम है कुमार सोनू, जो गोविंदपुर बिहार से हैं, जिन्होंने एकेडमी की 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। फ्रेंड्स, आज मैं लोकतंत्र में सुधार इस विषय पर आप सबसे कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो जब हम मालाबार तट की बात करते हैं तो मूलतः मालाबार तट पश्चिमी घाट पर है हमारे, जिसको सदर्न वेस्टर्न घाट हम कहते हैं, लेकिन ये जो अभी नेवी का जो अभ्यास हो रहा है जिसमें जापान ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यह अभ्यास बंगाल की खाड़ी में हो रहा है। जो पूर्वी तट है वह पूर्वी तट या कह लीजिए जो पूर्वी घाट है वो कोरोमंडल कहलाता है, कोरोमंडल तट। दोस्तों, आज के अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि जो केरल का पद्मनाभ मंदिर है, जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत ही धनी मंदिर है, जिसकी प्रॉपर्टी ही लगभग 2 लाख करोड़ की मानी जाती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इसके जो मैनेजमेंट है उस पर जो शाही परिवार है उसका हक बना रहेगा, यानी कि मंदिर का जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, उस पर शाही परिवार का अधिकार रहेगा। इससे पहले 1991 में वहां के हाई कोर्ट ने शाही परिवार के अधिकार को मंदिर के प्रशासन पर से समाप्त कर दिया था। तो बस एक छोटी सी एक घटना भर है जो आपके दिमाग में सामान्य तौर पर रहनी चाहिए। हो सकता है कि निबंध वगैरह लिखते समय इसका कुछ रोल आपको दिखाई पड़े। जो दूसरी घटना है, मुझे लगता है कि अपेक्षाकृत ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण घटना है, और वो यह है कि आज के अखबारों में आपने बहुत विस्तार के साथ इसके बारे में पढ़ा भी होगा कि गूगल ने भारत में 75,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की घोषणा की है और ये इन्वेस्टमेंट वो लगभग 5-7 सालों में करेगा। देखिए, अगर उस तरह से आप देखें, भारत जैसे विशाल देश के लिए 75,000 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस बात को दिखा रहा है कि गूगल का भरोसा भारत पर ज्यादा हो रहा है, या कह लीजिए कि उसे भारत में अपने हित ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं भारत का भी हित इसमें छिपा हुआ है। भारत का हित सीधे सीधे इस रूप में छिपा हुआ है कि देखिए, जब वो इन्वेस्टमेंट यहाँ करेगा तो उसे जो जॉब्स है, एम्प्लॉयमेंट की नई स्थितियां पैदा होंगी, हमारे देश में थोड़ी सी आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, तो डेफिनेटली इसका लाभ तो भारत को मिलेगा ही। इसके साथ ही साथ हमें एक बात और भी देखनी होगी कि खासकर ये जो इस तरह का जो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म अभी कुछ मुद्दों को लेकर के विवाद में आ रहे हैं। कहीं आप देख रहे हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप कैसे उनका हो रहा है, कि किसी को जिताने में, हराने में कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म या गूगल और ये सब जो है कैसे भूमिका निभा रहे हैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। डाटा सिक्योरिटी को लेकर के तो ये बहुत बड़े विवाद के केंद्र में आ ही गए हैं कि हमारे जो डेटा हैं, जो हमारे आंकड़े हैं, हमारे बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वे बहुत सुरक्षित नहीं है, उनका ये व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वह भी एक प्रॉब्लम आ रही है डाटा प्राइवेसी को लेकर के। भारत जैसे देशों में डेटा स्टोरेज को लेकर के भी प्रॉब्लम है, हम चाह रहे हैं कि जो डेटा स्टोरेज हमारा होता है वो भारत में ही हो, क्योंकि अभी जो बड़ी कंपनियां हैं उनके जो स्टोरेज हैं वो सर्वर जो बाहर में है उनके अपने देशों में हैं, तो उस पर भी हमारा उस तरीके से नियंत्रण नहीं हो पाता है। फिर आप ये भी देख रहे हैं कि जो हेट स्पीच, जो घृणा फैलाने वाली जो सूचनाएं होती हैं, जो उकसाऊ भाषण होते हैं, इसको लेकर के भी जो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म हैं वो लगातार विवाद में आते चले जा रहे हैं। इसकी जानकारी मैंने थोड़ी सी आपको इसलिए दी है ताकि खासकर जो स्थितियां हैं इनकी, जो डिजिटल में काम कर रहे हैं किस तरह की हैं, जो मैंने अभी आपको छोटी छोटी बातें बताई हैं, मुझे लगता है कि उनका संकलन कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि डिजिटल के संबंध में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें मदद कर सके। तो दोस्तों, अब मैं 2 राजनीतिक घटनाओं को आपके सामने खासकर रखना चाहूंगा। एक राजनीतिक घटना मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल को लेकर के है और जो दूसरी राजनीतिक घटना है वह अभी बकायदे राजस्थान में सरकार को लेकर चल रही है। देखिए मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के क्या घटना, इससे पहले आपको मालूम है कांग्रेस की सरकार थी, इसके बाद कांग्रेस में ही सिंधिया जी थे, सिंधिया जी को सरकार जो भी है आपस में उनके जो विवाद हुए इसके बाद वो कुछ अपने एमएलए को लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, कांग्रेस पार्टी अल्पमत में आ गई और नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस की सरकार गिर गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। ठीक है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उनके साथ जो एमएलए थे अब यह हुआ कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, चलिए उस पर बातचीत होती रही, उनमें से फिर बातचीत के दौरान जो भी रास्ता निकला उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इसके बाद जब पोर्टफोलियो की बात आई कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाए तो फिर से एक तरह से अवरोध की स्थिति आ गई, क्योंकि जो सिंधिया गुट के जो एमएलए थे उनका कहना था कि हमें ये विभाग चाहिए। देखिए जब ये विभाग की बात होती है तो उसका संबंध यही होता है कि उस विभाग का बजट कितना है। तो दोस्तों जब सच पूछिए तो मंत्रिमंडल में जो विभागों का विभाजन है उसका आधार जब बजट हो जाता है तो डेफिनेटली जनता के दिमाग में ये बात आती है, लोगों के दिमाग में, कि भाई ये फिर सेवा के लिए है या कुछ और है। मतलब मैं पहली बार इस तरह की न्यूज आज पढ़ रहा हूं भोपाल के अखबार में जिसमें ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है। मैं आपको उसका जो सब हेडलाइन है वो पढ़कर सुना रहा हूं कि सिंधिया की सरकार में भागीदारी 42%, लेकिन बजट में हिस्सा 26.70% ही, यानी कि जो मंत्रिमंडल में उनका जो फैलाव है वो 42% है लेकिन जो पूरा सरकार का जो बजट होता है, सरकार का बजट जो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का है, उसमें उनकी हिस्सेदारी 26% है। मतलब यह विश्लेषण का एक नया रूप है जो मुझे पढ़ने को मिला है। जबकि जब आप पार्टी बदल रहे होते हैं तो उस समय वक्तव्य यही दिया जाता है कि आप अपने प्रदेश की सेवा करना चाह रहे हैं। जो दूसरा बिंदु है वो राजस्थान को लेकर के है। आप देखिए कि राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार है, बहुत कम ही मार्जिन है कांग्रेस पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में, और अब कांग्रेस के अंदर ही जो वहां के उप मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट जी, वो कुछ एमएलए को लेकर के फिर वो जो भी अपने बात कर रख रहे हैं, बात रखी जा रही है। देखिए जब बात रखी जाती है, विरोध होते हैं, असंतोष होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र में ये कोई बहुत अनहोनी सी घटना है, ये जनरली होती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसी विवादों को, आपसी कलह को बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाता है। वो इस तरीके से नहीं हो, इस स्थिति तक नहीं पहुंचती बात कि बिल्कुल सरकार का ही पतन हो जाए और नई सरकार आ जाए और फिर आप उस नई सरकार के हिस्से बन जाएं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो लोकतंत्र का स्वरूप है वो किस तरीके का धीरे धीरे होता जा रहा है। तो दोस्तों कुछ तो ये दो तरह की घटनाएं थी, और इसके साथ ही साथ मैं आज आप लोगों को एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं जो भरत झुनझुनवाला जी का है, जिसमें उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस तरीके के सुधार की जानी चाहिए इसको लेकर के एक लेख लिखा है। हालांकि आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा क्योंकि भरत झुनझुनवाला जी आर्थिक स्थितियों पर लेख लिखते रहे हैं, लेकिन उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लेख लिखा है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जब उन्होंने लेख लिखा है, आप पढ़ेंगे इसे, तो कहीं ना कहीं उसे अर्थव्यवस्था से जोड़ करके ही देखा है कि शुरू में जो दुनिया में डेमोक्रेसी रही उन्होंने बहुत प्रगति की, लेकिन उनके प्रगति का आधार क्या था? ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम उनका डेमोक्रेटिक था, लेकिन बेसिकली वो शोषण पर आधारित था। मतलब वो उपनिवेशवादी सत्ताएं थी और वो बकायदे दूसरे देशों का शोषण करते थे और उसकी वजह से वो इतने धनी बने। इसके बाद फिर उन्होंने कुछ ये बातें भी रखी हैं कि ऐसे भी देश हैं, प्रमाण हैं, जो लोकतांत्रिक नहीं है, इसके बाद भी उन्होंने बहुत आर्थिक प्रगति की है, और ऐसे भी प्रमाण हैं जो लोकतांत्रिक हैं उन्होंने भी प्रगति की है, और ऐसे भी प्रमाण हैं जो लोकतांत्रिक होते हुए भी बहुत पिछड़े हुए। तो इसका आधार क्या है इसको लेकर के इन्होंने इस आर्टिकल में काफी विस्तार के साथ बात की है, और चूंकि हम लोकतांत्रिक देश हैं, हमारा पूरा संविधान लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र के बारे में हम लगातार दावे करते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि जब भी आपको डेमोक्रेटिक सिस्टम पर कभी कोई भी लेख पढ़ने को मिले आपको पढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ पढ़ने के दौरान अगर उसमें कोई नई बात आपको जानने को मिले तो उसे बकायदे नोट कर लेना चाहिए। देखिए इम्प्रूवमेंट तो आपका तभी होगा। इसमें देखिए कि जब वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्लिक करता है कि सबसे पहले वो यही कहेंगे कि चुनाव में सुधार होना चाहिए। यहां उन्होंने चुनाव में सुधार की बात नहीं की है, यहां उन्होंने सही मायने में जनता के साथ संवाद की बात की है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए यह बहुत जरूरी है कि चाहे वो हमारे पॉलिटिकल लीडर हो चाहे हमारे ब्यूरोक्रेट्स हों, वो जनता के साथ लगातार संवाद बनाए रखें, वो लोगों के बीच में जाएं, लोगों से बातचीत करें और लोगों को इस बात के लिए भी प्रेरित करें कि वो बिल्कुल पूरी निडरता के साथ अपनी बात रख सकें, जो उन्होंने कहा है कि भारत में नहीं है। और फिर उन्होंने दूसरे देशों की क्या स्थिति है उसके बाकायदे उदाहरण भी दिए हैं। जैसे अमेरिका के बारे में उन्होंने एक दो घटनाएं बताई हैं कि जैसे अभी न्यूयॉर्क में कोरोना फैला तो वहां के जो मेयर थे, जो हेड वहां उन मेयर, आप यूं कह लीजिए कि एक तरह से उस नगर के सब सर्वे सर्वा हैं, रोजाना वो पब्लिक के सामने आते थे, एक घंटे तक वो अपनी बात पब्लिक के सामने रखते थे, पब्लिक अपनी बात रखती थी। तो ये एक बहुत बड़ा उन्होंने उदाहरण दिया, ये उदाहरण आपको नोट कर लेना चाहिए। इसी तरह से उन्होंने ये भी बताया कि जो सरकार है उन सरकार में कुछ ऐसे हैं कि उनकी जब संसदीय, अमेरिका में जब उनके संसदीय समितियों की जो सुनवाई होती है अमेरिका में तो उसका बकायदे लाइव प्रसारण होता है, लाइव टेलीकास्ट होता है, जैसे कि हमारे यहां अब संसद का होने लगा है लाइव टेलीकास्ट। तो लाइव टेलीकास्ट होने से यह होता है कि जनता को पता लग रहा है कि कौन क्या बात रख रहा है, कैसे कह रहा है। यहां तक कि जो नगरपालिका की जो मीटिंग होती है उनका भी वीडियो, उन्होंने कहा कि मैंने देखा है नगरपालिका के मीटिंग्स की भी वीडियोग्राफी कराई जाती है ताकि पब्लिक को पता चल सके, बिल्कुल ओपन हो सके। तो इन्होंने जो संवाद की स्थिति है उसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार माना है, क्योंकि अगर जनता की आवाज ही नहीं है तो लोकतंत्र भी नहीं है। और उन्होंने दूसरी बात जो इसमें कही है वो ये है कि हमारे यहाँ जो कानूनी प्रक्रिया है वो बहुत धीमी है, उसे जल्दी किया जाना चाहिए, उसे शीघ्र बनाया जाना चाहिए, क्योंकि होता यह कि जैसे एक प्रोजेक्ट पास किया गया उसमें पता लगा कि 100 200 500 करोड़ रुपए खर्च हो गए, इसके बाद कोई उसे जनहित याचिका के तहत कोर्ट में ले गया, काम रुक गया, इसके बाद कोर्ट ने उसके खिलाफ जजमेंट दे दिया तो पता लगा कि उसमें 500 700 करोड़ रुपए जो लगे हुए थे वो बेकार चले गए। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ लोकतंत्र में सुधार के लिए नई बातें हम लोगों के सामने रखी हैं। तो मुझे लगता है कि इनके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो आप सबको नोट कर लेने चाहिए। दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: विक्रम ठाकुर, स्नेहल द्विवेदी, आशु जायसवाल, ऋचा बिस्ट और शिवानी शर्मा। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही मित्रों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।